अज्ञानत मिरांधस्य ज्ञानंजना सलाकया तत्सुरोन्मिलितं जैन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप सदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथानितं तं सजीवं साधुयितं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखानितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमावं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेषा सुन्नवादी पाश्चात्य दिगतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करति बाचलं पंगुलं हयति गिरिं जत्कृपात महं वंदे परमानंद माधवं श्रीगुरुदिनचरणं श्रीचैतन्येश्वरं नमो भूतले सम्मत जय। तो मेरा परिकल्पना था हम लोग चैतन्य चरितामृत के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, तो मैं बोला राय रामानंद संवाद दो तीन दिन में कवर हो जाता था, लेकिन वैष्णव प्रभु ने बोला बहुत डिफिकल्ट टॉपिक, जो टॉपिक कोई चाहते नहीं सुनने के लिए, एक टॉपिक है डेथ, मृत्यु के बारे में बोलने के लिए। तो मृत्यु या डेथ ऐसा एक विषय वस्तु होता है तो उसको कोई भी लाइक करते नहीं, पसंद नहीं करते हैं और सब लोग डरते हैं। लोगों ने कैसा अच्छा से जिएंगे इसीलिए चर्चा करते हैं, इसे अच्छा से मरेंगे इसलिए कोई चर्चा करते नहीं, कोई चाहते नहीं मरने के लिए, सब लोग डरते हैं। लेकिन हम लोग चाहते नहीं मृत्यु को, हम लोग चाहते नहीं लेकिन मृत्यु हम लोग चाहते हैं। देखो हमारा बचपन से जितना भी दोस्त बने हुए वो दोस्त आते हैं जाते हैं ना, बचपन में जो दोस्त थे वो भी किधर हम लोग को मालूम नहीं। लेकिन मृत्यु ऐसा दोस्त है तो हमको कभी छोड़ने वाला नहीं है। प्रभुपद ने बताया, प्रभुपद ने लिखा है डेथ है, बर्थ मीन्स डेथ, व्हाट इज डेथ, मृत्यु क्या है, तो जन्म का अर्थ मृत्यु है। क्योंकि जब कोई जीव शरीर धारण करके उसका जन्म होता है तो जन्म के साथ साथ मृत्यु को लेके आते हैं, इसलिए मृत्यु हर जीवों का एक बंधु भी होता है, हर समय जो पास में रहते हैं। हम लोग चाहते नहीं मृत्यु को, डरते हैं, लेकिन मृत्यु रहो मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ, तुम छोड़ने वाला नहीं हूँ। देखिए मृत्यु भगवान का और एक दूसरा रूप होता है। भगवान ने बताया ना, मृत्यु सर्वहरस्त हम कालस्मि हम, मैं काल हूँ, मैं मृत्यु हूँ, मृत्यु का रूप में मैं सब कुछ तुमसे खींच के ले जाऊंगा। मृत्यु भगवान का दूसरा रूप होता है। देखिए भगवान कैसा हो सकता है, परम ब्रह्म कैसा हो सकता है, परम ब्रह्म का लक्षण होता है अनुर अनियन महत्व महियान, जो सबसे बड़ा से बड़ा हो सकता है और छोटा से छोटा हो सकता है, वो तो परम ब्रह्म होता है। उपमापिक परम ब्रह्म का ये भी एक लक्षण होता है। परम ब्रह्म का एक महाऔश्वर्य माधुर्य संपन्न सर्व आकर्षणीय स्वरूप होता है, सर्व उत्कृष्ट सर्व आकर्षणीय स्वरूप होता है। आकर्षक कृष्ण जो रूप में सब कुछ का आकर्षण करते हैं, और परम ब्रह्म का और एक एक्सट्रीम होता है जो बहुत भयंकर भी हो सकता है। तो जो भी परम ब्रह्म को मानते हैं ना, वो दोनों साइड को मानने पड़ेगा। सिर्फ अच्छा साइड को मानने का, बुरा साइड नहीं मानेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों को मानने पड़ेगा। ये तो परम ब्रह्म का पूर्ण जानकारी नहीं होता हम लोग का। तो अनियान महत्व महियान दोनों का जानकारी होना चाहिए। देखिए जो परम ब्रह्म कौन है, सब भागवत में बताया, पहला श्लोक जन्मादश्य जतः, जिससे इस भौतिक जगत का सृष्टि स्थिति और प्रलय होता है, वो परम ब्रह्म होता है। तो परम ब्रह्म ऐसा नहीं जो लोग सोचते हैं मैं भगवान का शरण में आ गया मेरा सब कुछ अच्छा ही होगा। तो अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, जन्म भी होगा मृत्यु भी होगा। जो भगवान कैसा सोचते हैं, तो भगवान कौन है, न जो सृष्टि करते हैं, जो पालन करते हैं, जो संहार करते हैं, वो कौन है, तो कौन है, वो भी भगवान है। तो जब तक हम लोग भगवान का ऐसा करके ग्रहण करते नहीं, जो पालन करने वाला, जो सृष्टि करने वाला, वही भी संहार करने वाला। इसीलिए महाप्रभु ने बताया इसे हमारा सड़ंग शरणागति है, से तरीका शरणागति, सड़ंग शरणागति है थे जहार ताहर प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। से तरीका शरणागति होता है, इसमें से एक है कृष्ण रक्षति इति विश्वास, अवश्य रक्षते कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण हमको रक्षा करेंगे ही। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं क्या शिक्षा तक अंतिम श्लोक में, कृष्ण रक्षति इति विश्वास, कृष्ण न रक्षति इति विश्वास। आश्लित पदरतंग पिनस्त मंग अदर्शनात् मर्महत करत बा यथा तथा वा विदधात लंपट मत्स्यनाथ से सैव न परा। तुम मेरे को प्यार करके आलिंगन करो, मेरे को दर्शन दो, तो दर्शन मत दो, मेरे को तुम्हारा चरण में कुचड़ दो। जो कुछ होने से तुम मेरा प्रभु हो, ये शरणागति कैसा होता है, तुम मेरे को रक्षा करो या तुम मेरे को मार डालो, तुम ही मेरा प्रभु, इसको शरणागति बोलते हैं। भगवान का भक्त का ऐसे लक्षण होता है, क्योंकि भगवान किसको रक्षा करेंगे वो सुरक्षित रहेगा, किसको मार डालेंगे वो भी सुरक्षित रहेगा। भगवान का हाथ में, भगवान का इच्छा से वो जिनको मार डालेंगे वो सुरक्षित है, तो जिनको बचाएंगे वो भी सुरक्षित है। तो भगवान का ऐसा दो स्वरूप होता है, एक सर्व आकर्षण कृष्ण स्वरूप होता है, भगवत स्वरूप होता है। तो कोई कोई लोगों ने मंदिर में जाके भगवान को दर्शन करो, नहीं मेरा समय नहीं, मेरा बहुत ड्यूटी बाउंड बहुत कर्तव्य कर्म करने पड़ता है, मेरे को भगवान को दर्शन करने के लिए टाइम किधर है जाने के लिए मंदिर। तो भगवान बोलते हो हमारा मंदिर को आने के लिए तुम्हारा समय नहीं मेरे को दर्शन करने के लिए, ठीक है तुम घर में बैठे रहो, मैं जाऊंगा तुमको दर्शन देने के लिए। भगवान आके द्वार पर खड़ा होंगे, सबके द्वार पर, सिर्फ भक्त नहीं, भक्त अभक्त असुर सबको दर्शन देने वाला है। भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा ऐसा किसी के भाग्य में नहीं होता है। सबके भाग्य में ये मौका आता है भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान बोलते तुमको मेरा दर्शन में समय नहीं होता है, तो मैं जाऊंगा तुम्हारे पास दर्शन करने के लिए। भगवान एक दिन आएंगे हमारा दरवाजे के पास आगे खड़ा हो जाएंगे, तो किस रूप में आएंगे उस दिन, मृत्यु महाकाल, मृत्यु सर्वहरस्यम, भयंकर रूप में आएंगे। तब मैं बोल नहीं पाऊंगा, समय भी नहीं रहेगा, ये मेरा भी टाइम नहीं, मेरा ड्यूटी बाउंड है, लास्ट की जगह चुम्बु खाऊंगा, अभी थोड़ा रोका नहीं, नहीं अभी देखा लग जाते हैं। तब ड्यूटी, ये भगवान का और दूसरा रूप, इसका अच्छा तरीका हम लोग को जानकारी करना चाहिए, भगवान का दो स्वरूप को जान करना चाहिए, कि सरेंडर सिर्फ आत्मसमर्पण में बढ़ जाता है। इसलिए प्रभुपाद ने बताया साधन करो भजन करो मरते जान ले, समझते हैं, साधन करो भजन करो मरते जान लो है। आप लोग साधन करते हैं भजन करते हैं लेकिन मरना कैसे मरना है इसको सीखना चाहिए। ये मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है कैसे मरना सीखने के लिए, द आर्ट ऑफ डाइंग, मरने का कौशल क्या है। हमारा इंडिया में एक संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग, मालूम है आप लोग को रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, ये भगवत गीता में आर्ट ऑफ डाइंग सिखाता है। देखिए आर्ट ऑफ डाइंग सीखेंगे तो जीवन का पूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। तो मुहूर्त के लिए प्रस्तुति, मनुष्य सारा जिंदगी में जितना मुहूर्त हम लोग अतिवाहित करते हैं इस सब हमारा जन्म से शुरू करके मृत्यु जो मुहूर्त है जितना मुहूर्त हम लोग अतिवाहित करते हैं उसमें से वही मुहूर्त सबसे गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त है। जो मुहूर्त के बारे में हम लोग सुनना चाहते नहीं, चर्चा करना चाहते नहीं, आशा करके मानते नहीं, बुरा मानते हैं, डरते हैं, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य उसी मुहूर्त का तात्पर्य क्या है, गुरुत्व क्या है, वैशिष्ट क्या है, उसी मुहूर्त के लिए प्रस्तुत होने के लिए मनुष्य जीवन लक्ष्य है। इस मनुष्य जीवन में हम लोग बहुत परीक्षा का सम्मुखीन होते हैं और बहुत परीक्षा में हम लोग उत्तीर्ण भी होते हैं। तो हर परीक्षा में हम लोग उत्तीर्ण हो जाएंगे और उसी परीक्षा में फेल हो जाएंगे तो बस हो गया। तो इसीलिए हमारा जीवन में सबसे गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त, हाँ गुरुत्वपूर्ण क्षण है उसी क्षण जो क्षण में हम लोग इस शरीर को त्याग करेंगे। अरे बहुत बहुत बड़ा प्राधान्यपूर्ण गुरुत्वपूर्ण विषय होता है और मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी होता है। तो मुहूर्त के लिए प्रस्तुत होना, लोगों ने चाहते हैं कैसा मैं आशा से जीऊंगा, कोई चाहते नहीं आशा से मरूंगा कैसा, वो कोई सोचता नहीं आशा से कैसा मरना है, आशा से जीना है, ये शिक्षा हर जगह पर दिया जाता है। किंतु आशा से कैसा मर गए, देखो मरने के बारे में हम लोग थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा हमारा जीवन पूर्ण मात्रा से परिवर्तन हो जाएगा। जिन लोगों को मृत्यु के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है उन लोगों का जीवन दर्शन का प्रणाली दूसरा हो जाता है। चरवाक ने बताया ना हमारा भारत में 9 दर्शन है, 9 दर्शन से 3 नास्तिक दर्शन होता है और 6 आस्तिक दर्शन होता है। 3 नास्तिक दर्शन होता है चरवाक दर्शन, जैन और बौद्ध। ये 3 नास्तिक दर्शन भगवान को मानते नहीं, चरवाक आत्मा को मानते नहीं। चरवाक का मत ये होता है तो केमिकल एकत्रित होता है उससे चेतना का विकास होता है। ये भौतिक वैज्ञानिक लोग जैसा बोलते हैं कुछ केमिकल ने केमिकल का सम्मिश्रण के फल से रासायनिक द्रव्य का मिश्रण का फल से एक चेतना का उद्भव होता है। इस चरवाक का फिलोसफी होता है ऋणम कृत्या घृतम पिबेत जावत जीवत सुखम भवेत भस्मीभूत से देह से कुतः पुनरागमन। जब तक इस शरीर में तुम हो ना तब तक आशा से खाओ पियो मौज करो आनंद करो, तुम डकैती करो लोन करो जैसा भी मौज करो। भस्मीभूत से देह से जब इस शरीर भस्म हो जाता है तो कुतः पुनरागमन, इसका फिर किधर से आना, आना नहीं, आशा से मौज मजलिस करो। ये फिलोसफी होता है जब को मनुष्य का दिमाग में फिलोसफी घुस जाता है। इस फिलोसफी का मनुष्य का दिमाग घुसना जरूरत नहीं, वो बैठा है उधर, घुसाना नहीं, अंदर में घुसाना नहीं, वो बैठा है। फिलोसफी हम लोग मृत्यु के बारे में सोचते नहीं, हम लोग का ये आइडिया में हर समय जिंदा रहूंगा, इसी को प्लान करके पंचवास्तर की योजना करते हैं, भविष्य का सिद्धांत करते हैं, सबका प्लान ऐसा ही होता है। कब मृत्यु आ जाएगा ये चिंता कोई भी करते नहीं। और जब लोगों का चेतना में ये भाव आता है मेरे को एक दिन मरने पड़ेगा तो वो उसका जीवन का प्लान दूसरा हो जाता है। तो बहुत बड़ा अंतर है दो भावना में। तो इसीलिए भगवत गीता देखिए तो मृत्यु जो विषय के बारे में कोई सोचते नहीं, कोई चर्चा करते नहीं, सब लोग डरते हैं, लेकिन ये इतना एक जरूरी विषय होता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अक्षर ब्रह्म योग या अष्टम अध्याय में सारे अष्टम अध्याय मृत्यु के बारे में ही बताया ना। तुम दिन में मरोगे तो किधर जाएंगे, रात को मरेंगे तो किधर जाएंगे, सूर्य भगवान का देवता का उत्तरायण में देह त्याग करेंगे तो आत्मा किधर जाएगा, सूर्य जब दक्षिणायन में है तब देह त्याग करेंगे तो किधर जाएंगे, और जो भक्त लोग फिर बताए भक्त लोग जब भी देवता करेंगे उनका अच्छा गति होगा। उत्तरायण दक्षिण जिनका कुछ विचार नहीं होता है तो भगवत गीता देखो इतना गुरुत्वपूर्ण विषय मृत्यु एक एंटर चैप्टर पूर्ण संपूर्ण एक अध्याय भगवान कृष्ण ने बताए सभी जंग जंग वापी स्मरण भाव त्यजन चंते कले वरंग संग संग कौनते सदा तदभाव भावित जो भाव से जो चिंतन करते हुए जी इस शरीर मनुष्य शरीर को त्याग करता है उनका गति उनका भाव ऐसा ही होता है। इसलिए मृत्यु समय में क्या हम लोग चिंता करते हैं एक बहुत जरूरी बात होता है। इसलिए कृष्ण बोलते हैं अंत काल से मामे जीवन अंत नारायण स्मृति अंत काल से मामे जीवन का अंतिम समय में जो मेरे को स्मरण करते हैं अंत काल से मामे स्मरण मुक्त कलेवरम जब प्रयात से मदभाव जाति नास्ती संशय अंतिम समय जिसका जो चिंतन होता है कोई जीवन का मृत्यु समय में सोचता है तो मेरे को थोड़ा चिकन का सूप होने से अच्छा होता था सब प्रकृति का तुम्हें चिकन चाहिए सूटेबल बॉडी मैं दे दूंगा तुम्हें शेर बन जा तुमसे अच्छा से तुम मांस खाएंगे कोई बोलने के लिए नहीं रहेगा कोई नियम नहीं कोई बाधा भी नहीं दिल भर के खाते रहो कुत्ता बना देंगे शेर बना देंगे या शरीर भी मिल जाएगा कोई कुछ सोने के लिए खूब अच्छा लगता हो मेरे को सोना न सोना चाहिए तो तुम एक स्वर बन जाओ सुधर रहेंगे। इस शास्त्र में बताया गया हमारा मृत्यु का समय में जो मन में आता है जो चिंतन आता है उसे शरीर हमको मिलेगा तो मृत्यु का समय भगवान का चिंतन करेंगे हरे कृष्ण करेंगे बस भगवत धाम प्राप्त होगा। तो कोई बोलेगा ओ तब तो अच्छा बात है तो सारा जिंदगी भर हरे कृष्ण करना क्या जरूरत है यही 3 बजे मंगल आरती में आओ यही 16 माला जप करो 4 रेजुलेशन फॉलो करो फिर जरूरत नहीं अंतिम समय में हरि स्मरणम बस हो गया ऑल प्रॉब्लम सॉल्व ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि ना हम जो भगवान का स्मरण करेंगे भगवान को किससे स्मरण करेंगे हाथों से स्मरण करेंगे मुंह से स्मरण करेंगे आंखों से स्मरण करेंगे किससे लोगों ने भगवान का स्मरण करता है मन से स्मरण करते हैं ना भगवान को मन से याद करते हैं मन से स्मरण करते हैं। लेकिन भगवान तो मन और बुद्धि का ऊर्ध्व होता है तो भगवान परम ब्रह्म शरीर मन और बुद्धि का ऊर्ध्व होता है तो परम ब्रह्म भगवान को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं तो मन में कैसे आएंगे भगवान मन में आएंगे ही नहीं भगवान ऐसा आते नहीं मैं चाहूंगा भगवान का स्मरण करूंगा ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान जब कहेंगे तो हमारा मानस पट में मन में उदित होंगे आविर्भूत होंगे तब उनको याद कर सकेंगे हम लोग नहीं तो हम लोग याद कर नहीं पाएंगे भगवान को। भगवान हमारा मन का अधीन नहीं होता है मन का ऊर्ध्व होता है। तो जो भक्त जिंदगी भर भगवान के लिए साधन भजन करते हैं तो भगवान कृपा करके उनका मन में आके आविर्भूत होता है मृत्यु समय में मन में आके आविर्भूत होता है तो भगवान को वो याद कर सकते हैं। इसीलिए कुलशेखर जी बताया ना प्राण प्रयाण समय कफबात पीत कंठावरुच कुछ स्मरणम से तो हम लोग का ऐसा एक्सपीरियंस है ना शास्त्र में बताया गया पुराण में तो मृत्यु का समय जब तो कितना पीड़ा होता है मालूम है कोई सुना ही है कितना पीड़ा होता है तो बिच्छू 20,000 बिच्छू बोलता है मैं मेरा माँ मेरे को बताया था 1,000 बिच्छू तो मैं बंगाल में सुना 30,000 बिच्छू ये बोलता है 20,000 बिच्छू तो जो भी हो एक बिच्छू कमरों से जितना भाव आता है सब नृत्य करते हैं उससे तो 20,000 और 1,000 बिच्छू कम जब उसको बाइकिंग करेंगे काटेंगे जब काटेंगे कितना ना पीड़ा होगा। देखो हम लोग का तो एक्सपीरियंस है हम लोग 16 माला जप करने वाला है दीक्षा लिए गुरुदेव से जब 2 दिन थोड़ा सिर पीड़ा होता है थोड़ा बुखार हो जाता है तब तो मैं काल जप करूंगा मन में जप नहीं लगते है एक्सपीरियंस है ना ऐसा थोड़ा बीमार हो जाने से जप में मन नहीं लगता है और 20,000 बिच्छू जब काटेंगे जो पीड़ा है वो पीड़ा में थोड़ी मन लगेगा सर। इसीलिए राजा कुलशेखर ने बताया कुतः स्मरणम से आपको कैसे मैं स्मरण कर पाऊंगा कफबात पीत कंठ अवरुद्ध जब हो जाएंगे तो जो पीड़ा आएगा तुमको कैसे मैं स्मरण कर पाऊंगा तो प्रार्थना कर, जब मेरा सुस्त मस्तिष्क है शरीर में तुम्हारा हाँ राजस्व मानस राज हंस सब चरण कमल का स्मरण करके मेरा मृत्यु होना चाहिए। तो भगवान का ऊपर है, हमारा ऊपर नहीं है। भगवान हमारा ऊपर कितना प्रीत है इसी का अनुसार कृपा करेंगे। तो ऐसा नहीं तो ठीक है, मतलब बुढ़ापा हो जाएंगे, जब मृत्यु का समय आएंगे मैं कृष्ण का स्मरण कर लूंगा, अभी बचपन में क्यों भगवत सेवा करूंगा। एक हिंदुओं में एक धारणा है, हम लोग जब स्कूल में गीता सिखाने के लिए जाते हैं तो पिता माता जी और शिक्षक महाशय ने बताते हैं, नहीं नहीं ये छोटा बच्चा है, बच्चा समय में क्या धर्म करेंगे, जब बूढ़ा हो जाएगा धर्म करेंगे, हम बचपन में थोड़ी धर्म करते हैं। ये हिंदुओं का अंदर में ऐसा धारणा है। फिर मुस्लिम लोग देखो तो बचपन से कुरान सिखाते हैं, हिंदू लोग सोचते हैं गीता भागवत, तो गीता भागवत कौन पढ़ने वाला, जो बूढ़ा बूढ़ी हो गए पढ़ेंगे। हिंदुओं का लोग में बहुत हिंदू में घर में भगवत गीता ही ग्रंथ मिलेगा नहीं, बहुत हिंदू का घर में जाओ, जो कोई मुस्लिम का घर में कुरान रहेगा रहेगा, क्रिश्चियन में घर में जाओ बाइबल रहेगा ही रहेगा, लाखों हिंदू का घर में जाओ गीता नहीं मिलेगा। और कोई हिंदू और गीता होगा तो वो लाल कपड़ा में इसको अच्छा से बंद करके वो ठाकुर के पास रख देते हैं, तो इसको मत छूना, वो धर्म ग्रंथ है, कोई खोलते नहीं ऐसा होता है। अरे कोई खोल के पढ़ता है तो वो पढ़ते हैं, बहुत आपसे मुखस्त करते हैं, अरे उससे लंबा लेक्चर भी देते हैं, एक लाइन जीवन में पालन करते नहीं। लेकिन मुसलमान लोग देखो बचपन से सिखाते हैं। तो मैं जब गांव में था इस्कन में ज्वाइन किया नहीं, इस्कन का ग्रंथ पढ़ाई लिखाई पढ़ाई करता था, तो गांव में प्रचार हो गया जब मैं इस्कन में जाकर बाबा जी बन जाऊंगा, तो गांव लोगों से मालूम हो गया। तो मैं एक दिन गांव में जाता था, एक बुढ़ा ब्राह्मण उनका मकान का इंसान का मकान और बारंडा में बैठा था, तो 60-65 ईयर्स ओल्ड मैन, तो गोद में उसका नासिक को पकड़ के बैठा था। तो मेरे को बोला, पूर्व का नाम पुकार के बोला, ए इधर आओ इधर आओ। मैं तो 19 बच्चर का था तब, तो मैं किया, बहुत बड़ा बड़ा ब्राह्मण है, तो मैं सुना तुम बाबा जी बन जाएंगे, स्कन में ज्ञान करेंगे, तुमका कुछ शास्त्र ज्ञान है, कुछ जोर से डांडा मेरे को। अरे बोला शास्त्र में क्या बताया, शास्त्र ने बताया उड़िया भाषा में, मेरा जन्मस्थान पुरी में है तो उड़िया भाषा में बताया, तो पुत्र पेशीना पत्नी पेशीना पुत्र पास है तब है कलिव सन्यासम टू 50 ईयर्स ओल्ड, जब 50 साल उम्र होगा तब तुम्हारा स्त्री को देखभाल करने के लिए पुत्र का हाथ में अर्पण करके तुमको संन्यास लेना है, और तुम इस बचपन में संन्यास ले जाता हो मेरे छोटा था बच्चा, उसको उत्तर दूंगा, कुछ उत्तर नहीं दे पाया। तो बाद में मैं सोचता था जब इसको ज्वाइन करने के बाद मेरा उतना ज्ञान होता था, मेरे को बोलता था तुम मेरे को ज्ञान देते हो 50 साल होना जब होगा तो संन्यास लो, तुम 65 होगा तुम क्यों बैठा है सर, तो नासी का गोद में लेके बैठा है। तो जो बचपन में नहीं होता है वो बूढ़ा उम्र में नहीं होता है, एक भ्रांत धारणा है हिंदुओं में, तो सोचते हैं जब बुढ़ापा हो जाएगा बूढ़ी बन जाएगा तब गीता भागवत पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हिंदू लोगों ने गीता भागवत को अच्छा से लाल कपड़े से बंद करके रखते हैं, तो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर मर जाते हैं तो ढूंढते हैं गीता किधर है, ले आओ गीता किधर ले आओ, तो मरने के बाद सुनाएंगे। अरे मरने के बाद सुनने से क्या होगा, जब मरने के लिए तो तब क्या होगा, सर जिंदगी भर तो सुना नहीं, अब मरने के दिन सुनने से गए। अरे भगवत गीता मरने वाला के लिए नहीं है और जीने के लिए, ये बहुत विभ्रांति है हिंदुओं का अंदर में, वो सोचते हैं धर्मीय ग्रंथ मरने वाला के लिए नहीं, जीने वाला के जीने के लिए, मरने के लिए नहीं है। इसलिए देखिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इतना प्राधान्य दे इसका पर। अब भगवत गीता क्या, अब देखिए श्रीमद भागवत, श्रीमद भागवत में जो इतना बड़ा आलोक चर्चा हुआ 18,000 verses 18,000 श्लोक, इतना बड़ा चर्चा हुआ, किस प्रश्न का आधार पर ये चर्चा हुआ था, एक ही प्रश्न है, परीक्षित महाराज का अभिशाप प्राप्त हुए थे, श्रृंगी अभिशाप दिया था, सप्त दिन का अंत में तक्ष का करल दंशन में तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। तो परीक्षित महाराज को जब संवाद मिला तो परीक्षित महाराज क्या किए, परीक्षित महाराज जीने के लिए कोशिश किए नहीं, लेकिन मरने के लिए प्रस्तुत लेने के सिद्धांत किए थे। लेकिन हम लोग का जीवन में ऐसा होता है, मेरा जीवन भी ऐसा ही होता है, कोई बीमार आ जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, सारा दुनिया भर ढूंढते हैं, दौड़ते हैं, किधर जाने का, 6 महीना में बच जाऊंगा, हाँ अब 6 महीना बच जाऊंगा और 1 महीना बच जाऊंगा। बहुत पीड़ा होता है, कठिनाई होता है, तब भी बचने के लिए कोशिश करते हैं। तो परीक्षित महाराज, उनको मालूम हो गया, हाँ 7 दिन का अंत में मेरा सर्प का दंशन में मृत्यु हो जाएगा, तो बचने के लिए कोशिश, ज्यादा में बच जिंदे रहोगा इसलिए कोशिश किया नहीं। तो परीक्षित महाराज जब प्रयोपदर्शन करने के लिए गए गंगा के किनारे पर, पतित बाबा ने गंगा परीक्षित महाजन सोचे ने सोचे ये पानी मेरे को प्यास लगा, इसलिए मैं इतना बड़ा महत पाप कर दिया, तो इस 7 दिन में पानी नहीं पीऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा तो पानी नहीं पीऊंगा, एक पतित बाबा ने गंगा का शरण में मैं जाऊंगा। तो उधर जाके बैठ गए, प्रयोपदर्शन किए, तो सारा दुनिया भर के लोगों ने, मुनि ऋषि लोग आ गए, दूसरा प्लैनेट से भी देवता लोग भी आ गए। तो मेरा मन में ऐसा प्रश्न आता है, तो परीक्षित महाराज चाहते थे आपको बचा सकते थे, क्या सांप डसते है, सांप डसने का कोई मंत्र बोल के भी उसको बचा सकते थे। ऐसा भी मैं सुना, वैष्णव प्रभु ने खूब बोलता था, एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण आता आया, जब सुना परीक्षित महाराज का सब डंसेगा और मर जाएंगे, तो ब्राह्मण आता था उनको बचाने के लिए। तो आने के समय रास्ता में एक आदमी का साक्षात हुआ, तो पूछा तुम किधर जाते हो, बोला मैं, ब्राह्मण बोला उनका भृगु ऋषि ना क्या, भृगुमुनि ब्राह्मण कौन है, हाँ कश्यप, हाँ कश्यप ब्राह्मण ने बताया, तो मैं जाता हूँ, मैं सुना परीक्षित महाराज को तक्षक करके सांप डसेगा तो मर जाने से, मैं मेरा बस मंत्र है, मैं फिर उसको जीवन वापस ले आऊंगा। तो जो व्यक्ति उनको इसे पूछता था तुम किधर जाते हो, किसी लिए वो तक्षक था, तो तक्षक उसका स्वरूप को प्रकट किया, बोला मैं तो जाता हूँ उनको डसने के लिए। तो तक्षक ने पूछा तुम क्यों जाते हो, तुमको क्या फायदा है। तो ब्राह्मण ने बताया मैं उसको बचाऊंगा तो बहुत दक्षिणा मिलेगा, मैं मिलेगा मेरे को, ब्राह्मण लोग तो दक्षिणा के लिए बहुत लोभी होते हैं, तो मेरे को दक्षिणा मिलेगा। तो तक्षक पूछा कितना दक्षिणा तुमको मिलेगा, तो बोला 1 लाख रुपया डॉलर, उसी टाइम में जो करेंसी था तो बताया एक अमाउंट बताया। तो तक्षक बोला मैं तुमको डबल दे दूंगा, तुम मत जाओ इधर से वापस चले जाओ। अब ब्राह्मण लोग डबल मिलेगा तो उसका ड्यूटी छोड़ के भागने लगा उधर से, मैं किधर पड़ा है। इसीलिए बाद में मुनि ऋषियों ने उनको बहुत धिक्कार किए थे, तुमने इतना लोभी, परीक्षित महाराज इतना महात्मा को तो बचाने के लिए आने से पैसा का लोभ से भाग गए। तो इसको बोलने का मतलब है कोई भी लोग था ना, तो उसके बाद क्या हुआ, वो पूछा तक्षक ने पूछा मेरे को कैसा मालूम होगा, विश्वास होगा तुम्हारे पास ऐसा मंत्र है, पावरफुल मंत्र है। तो बोला तुम मेरे को परीक्षा करो। तो तक्षक ने बताया देखो ये बहुत बड़ा पेड़ है, इस पेड़ को मैं दंशन करूंगा, और वो तक्षक लुब्ध कुंभक ये जो सर्प होता है नागलोक से आते हैं, तो इन लोग को किसको काट के मारते नहीं, लोग इतना पॉइजन से मुंह से आग निकलते है, 20 ज्वाला निकल ऐसे मर जाएंगे। आपका काली नाग का अवस्था था, इधर काली नाग का बीज जहर इतना पावरफुल था, आसमान में कोई पक्षी उड़ के जाते थे तो उससे गिर जाते थे, तो इतना पावरफुल सर्प था। तो वो बनियन ट्री सर्प वृक्षों को जला दिया, भस्म हो गया। तो बोला अभी इसको तुम बचाओ, अरे ब्राह्मण मंत्र पाठ किया तो पेड़ फिर जड़ से फिर उसको बड़ा होने शुरू किया। तो तक्षक का आश्चर्य हो गया, कोई एक व्यक्ति मेरे को ऐसा बताया, सही है कि नहीं मालूम नहीं। तो जब वो पेड़ को जला दिया, वो पेड़ में एक मनुष्य था उधर, तो पेड़ फिर निकला तो वो मनुष्य उधर आविर्भूत हो गया पेड़। तो तक्षक देखते तो बहुत आश्चर्य की बात है, तब तक तकन विश्वास हो गया, बोला ठीक है मैं तुमको डबल दे दूंगा, तुम इधर से भागा। इसको बोलने का ये मेरा उद्देश्य है। तो उस समय ऐसा भी पावरफुल लोगों ने थे, जब परीक्षित महाराज चाहते थे तो उनका मृत्यु को रोक सकते थे, लेकिन परीक्षित महाराज उसके लिए कोशिश किया नहीं। परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा शुरू करेंगे, देवलोक से देवता लोग भी आए थे, वो लोग साथ में अमृत लेकर आए थे, तो लोग भी एक प्रपोजल रखे सुखदेव गोस्वामी जी को, आप एक काम कीजिए, हम लोग हाँ देवलोक से नेक्टर अमृत ले आए, परीक्षित महाराज को अमृत पिला दीजिए, वो मरेंगे नहीं, और उनके एक्सटेंड में हम लोग को भागवत अमृत पिलाए। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत गुस्सा किए, युवराष्ट्र बेटा तुम यार, अरे तुम इस स्वर्गलोक का नेक्टर अमृत ले आके मेरा भागवत का अमृत के साथ एक्सटेंड करेंगे, तो स्वर्गलोक का अमृत ले आए थे, लेकिन परीक्षित महाराज इसलिए कोशिश किए नहीं, परंतु उन्होंने कोशिश की, मैं भी क्या करूं, मेरा क्या ड्यूटी, ओनली 7 days, 7 दिन बाकी है मरने के लिए, मेरा भी क्या कर्तव्य है। तो परीक्षित महाराज प्रयोपवेशन में बैठे हुए देह त्याग करेंगे, इसीलिए सब मुनि ऋषि आकर बैठे थे, तो कर्मकांडी लोग आए थे, ज्ञानी लोग भी आए थे, योगी लोग भी आए थे। तो परीक्षित महाराज किसी को पूछा नहीं, आप मुनि ऋषि लोग आए हुए बताए बताए, मैं कैसा सर्प दंशन से बच जाऊंगा, मेरा बीमार अच्छा हो जाएगा। जैसा हम लोग गांव में प्रचार करने के लिए जाते हैं ना, तो गांव के लोग आता है, साधु बाबा हमारा पेट में पीड़ा है, कुछ कर दीजिए कि सब अच्छा हो जाएगा, मेरा तीन महीने में राहत बुला दीजिए, ऐसा साधु को देखने से लोग ऐसा सोचते है। परीक्षित महाराज साधु महात्मा जाए ऐसा पूछा नहीं, परीक्षित महाराज का प्रश्न बहुत गुरुत्वपूर्ण था, वो दूसरा कुछ प्रश्न पूछा नहीं, कैसा मैं बचूंगा, कैसा मैं आशा से जीऊंगा, ये नहीं था उनका पसंद का, कैसा मैं मरूंगा, मेरा मृत्यु आसन्न है, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, जो कर्तव्य का निभाने से पालन करने से मैं जीवन का अंतिम लक्ष्य को सार्थ जीवन का सार्थ कर सकता हूँ, ये मेरे को बताए। मेरा मृत्यु आसन्न है, बहुत निकट, हर जीवन का मृत्यु आसन्न है, कोई कब मरेगा वो तो मालूम है, हम लोग बोलते बूढ़ा का तो हम लोग मारेंगे, कौन बूढ़ा है ना, मृत्यु सब लोग बूढ़ा है, बूढ़ा वृद्धा अवस्था, शिशु अवस्था, जौवन अवस्था, वृद्धा अवस्था, वृद्ध के बाद क्या आता है, मृत्यु आता है। जीवन में मृत्यु का पहला अवस्था को क्या बोलता है, बुढ़ापा बोलते हैं, है ना, तो मृत्यु तो जब भी आ जाएगा ना, इसलिए अंग्रेजी में बोलते है ना, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 60 years old man, तुम 60 साल का बुढ़ा हो, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 20 years old man, तुम 20 years का बुढ़ा हो, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 5 years old man, आई 5 साल का बुढ़ा हो, सब बुढ़ा ही हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, सब बुढ़ा ही है, सब मरेंगे। तो परीक्षित महाराज वो प्रश्न पूछते हैं, मेरा अंतिम समय आ गया, मेरा क्या कर्तव्य है, 7 दिन समय, 7 days आया, इसमें से मैं क्या करूं। तो कर्मकांडी लोगों ने थे मुनि ऋषि तो उठाए गए, ओ परीक्षित महाराज आपको कोई चिंता का कारण नहीं है, आप सिर्फ प्रायश्चित कर दीजिए, अटोनमेंट पूरा में प्रायश्चित के बारे में लिखा गया, प्रायश्चित करने से हो जाएगा, कर्मकांड करो। लेकिन परीक्षित महाराज तो भगवान का महान भक्त थे, तो परीक्षित महाराज ने बता रहे ये कर्मकांड प्रायश्चित करके क्या होगा, तो हस्ती स्नान का माफी होगा, उसको रिजेक्ट कर दिए। तो कर्मकांडी लोग से बैठ गए, फिर ज्ञानी लोगों ने थे मुनि ऋषि ने ज्ञानी थे, तो ज्ञानी लोगों ने खाए गए, ओ परीक्षित महाराज आपको कुछ डरना नहीं, अरे ज्ञान का अनुशीलन करो, ज्ञान इतना शक्तिशाली होता है सब पाप को भस्मीभूत कर देगा, ज्ञान ज्ञानाग्नि ज्ञान रूपक आग का द्वारा अग्नि का द्वारा सब पाप भस्मीभूत हो जाएगा, तुम ज्ञान का चर्चा करो। परीक्षित महाराज को मालूम है ना, बहुनांग जन्म नामंत ज्ञानवान मांग प्रपद्यंत है, अरे ज्ञान का अनुशीलन करो, बहु जन्म ज्ञान का चर्चा करने के बाद कोई भगवान का चरण में आत्मसमर्पण करते हैं, मेरा पास 7 days 7 दिन ही है, तो ज्ञान का जरा मैं ज्ञान मेरा क्या करे। तो ज्ञानी लोग फिर बैठ गए उधर, फिर योगी लोग ठहर गए, और परीक्षित महाराज आपको कुछ चिंता का कारण नहीं, आप योग साधना कीजिए, यम नियम आसन प्राणायाम। परीक्षित महाराज ने सोचने लगा, रहे यम आसन तो हजार हजार साल लग जाएगा, मेरा 7 days टाइम है, 7 दिन हाथ में समय है, सात दिन मैंने कैसा परफेक्शन मिलेगा वो बात बताई। कैसा चर्चा होता था तो उसी सभा पर एक बहुत तेजस्वी पुरुष आने लगे, तो नंगा थे और उनका बाल इधर इधर बिखर गया था। तो उधर वो नंगा था ना, लोगों ने पागल सोचते थे, गांव का बच्चे और नारी लोग थे, उनका टीजिंग करते थे, पीछे दौड़ते कोई पागल आ गया इधर। और वो पुरुष वो दिव्य पुरुष ज्योतिर्मय पुरुष थे, तो जो सभा का नजदीक पर आ गए ना, सब मुनि ऋषि ने ठहरे गए। वो सुखदेव गोस्वामी थे, तो सुखदेव गोस्वामी को संवर्धना करके आह्वान करके आसन पर बैठाए परीक्षित महाराज। उनका चरण कमल को धोने के बाद उनका आरती करके शिष्य के चरणों के पास बैठे और उनको प्रश्न पूछे, गुरुदेव आपके पास मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? तो मेरा मृत्यु आसन्न है, इस जगत में हर जीवों का मृत्यु आसन्न है, तो जीव का क्या करना चाहिए, जो करने से जीवन का अंतिम फल उसका लाभ होगा, सर्वश्रेष्ठ का सिद्धि प्राप्त होगा। तो वही एक प्रश्न था, तो एक प्रश्न के लिए पूरा भागवत कथा चर्चा की थी, एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आस्था से जीने के लिए नहीं, आस्था से मरने के लिए। तो एक मुहूर्त परिस्थिति के लिए सारा जिंदगी उद्दिष्ट है, लक्ष्य जिंदगी का लक्ष्य है, वो एक मुहूर्त के लिए प्रस्तुत लेना। तो सुखदेव गोस्वामी जब सुने तो उन्होंने बता रहे, सात दिन तो बहुत समय है तुम्हारे हाथ। परिचित महाजन बताते हैं, मेरा हाथ ओनली 7 डेज, मात्र 7 दिन समय है, 7 दिन में जीवन का अंतिम लक्ष्य मेरा कैसे प्राप्त हो सकता है ये बताए। सुखदेव गोस्वामी ने बताया, अरे 7 दिन बहुत समय है। तब सुखदेव गोस्वामी मात्र बताए और राजा के बारे में, कौन सा राजा? खटंग महाराज के बारे में। खटंग महाराज इस सफागरा पृथ्वी का सम्राट थे, बहुत शक्तिशाली सम्राट थे, इतना शक्तिशाली थे तो एक बार देवता और असुरों का बीच में युद्ध हुआ था, और युद्ध में देवता लोग ने हार जाते थे। तो देवता लोग ने आए खटंग महाराज का सहाय्य मांगने के लिए, तुम आओ हम लोग का पक्ष है, थोड़ा असुर लोग से लड़ाई करो। अरे खटंग महाराज इतना शक्तिशाली थे तो देवता लोग को पक्ष लेके देवता लोग को पक्ष लेके असुरों के साथ लड़ाई किए थे। तो लड़ाई से असुर लोगों ने सब दिखित पराजित हो गए, तो देवता लोग बहुत खुश हो गए। अभी देवलोक से खटंग महाराज धरती पर आएंगे, तो देवता ने बहुत खुश हो गए थे। तो देवता ने पूछे, खटंग महाराज अभी आप हम लोग के लिए इतना मेहरबानी किए, इतना सहाय किए, आप अभी मरते लोग पर जाएंगे, बताइए आपको क्या चाहिए, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि मर्त्य लोक में ऐसा चीज नहीं जो स्वर्ग लोक में है, पारिजात फूल है उधर, और रंभा मैना का है, कौन कितना है चीज है, तुम लोग तो उस चीज में कुछ इधर से कुछ गिफ्ट ले जाइए इधर। तो हम लोग होते तो क्या करते थे, हम लोग ऐसा मौका मिलेगा स्वर्ग में जाएंगे, फिर स्वर्ग से घर पर वापस आने पड़ेगा, तो हम लोग तो पारिजात फूल रंभा मैना का कुछ जुगाड़ करके इधर आ जाते थे। तो मेरे जैसे बाबा आता था, जब मैं पहले अमेरिका जाता था ना, तब तो इतना फ्री मार्केट नहीं था, इंडिया में बहुत चीज नहीं मिलता था, तो जो देखता था इंडिया में ले जाऊंगा ऐसा होता था। तो मेरे ऐसा लगता है कोई स्वर्ग लोग पर जाएगा तो ऐसा कुछ व्यवस्था करेगा, कुछ मर्त्य लोग पर ले जाऊंगा। तो लोग सोचते थे तो खटंग महाराज ऐसा कुछ चीज मांगेगे, हम लोग गिफ्ट दे देंगे। तो खटंग महाराज बहुत चालाक थे, तो खटंग महाराज ने बताए, तो तुम देवलोक सिद्ध पुरुष हो, मेरे को एक उपकार कीजिए। क्या उपकार कीजिए? ना आप लोग हिसाब करके बताए मेरे को, मेरा कितना समय और जिंदा रहूंगा, मेरा मृत्यु कितना समय बाद होगा। तो देवता लोग कैलकुलेशन करके बताए, खटंग महाराज एक मुहूर्त है तुम्हारे हाथ में, एक मुहूर्त, एक मुर्ग खटंग महाराज भगवान के स्मरण के बस उनका अंत नारायण स्मृति प्राप्त हो गई। जीवन एक मुहूर्त, वन मूवमेंट सफिशियंट। तो हमारा गुरु महाराज जी इसलिए जयपत महाराज जी बताते थे, देखो परीक्षित महाराज को मालूम था तुम्हारे हाथ में 7 दिन समय है, खटंगा महाराज का मालूम है, तुम्हारे हाथ 1 मुहूर्त समय है, लेकिन हम लोग का मालूम नहीं। 7 मिनट है, 7 दिन है, 7 साल है, कुछ भी मालूम नहीं। तो ये जीवन का लक्ष्य, हर समय हमारा जीवन का कार्यक्रम को नियंत्रण करना चाहिए, सामने में मृत्यु को रखते। तो मृत्यु तो जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु से, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होगा ही होगा। मृत्यु को कोई लंघन कर नहीं पाएंगे, सबको मृत्यु को फेस करना ही पड़ेगा। एक बार मैं श्रीला राधा गोविंद महाराज से एक पौराणिक कहानी सुना था मृत्यु के बारे में। तो एक आदमी था, मृत्यु को बहुत डरता था। वो महाराज ने बताते, वो व्यासदेव जी का नाना जी थे, व्यासदेव का नाना जी, तो मरने नहीं चाहते थे। तो व्यासदेव का नाना जी व्यासदेव के पास गए, बता देखो मेरा नाती नाती ना, ना, ना नाती हा? नाती और व्यास सुना, तो मैं तो बूढ़ा हो गया, अभी मरने का समय आ गया, लेकिन मरने के लिए मैं बहुत डरता हूँ, तुम कुछ व्यवस्था करो, मैं नहीं मरूंगा। तो व्यासदेव ने बताया, ऐसा कैसे हो सकता है, इधर जो जन्म लिया जन्म के साथ साथ मृत्यु आता है, सबको मरना ही पड़ेगा। तो नाना जी सुना, नहीं नहीं नहीं, तुम भगवान का अवतार हो, तुम मेरा मरना बंद कर दो, जैसे व्यवस्था करो, मरना बंद करना चाहिए। तो व्यासदेव जी क्या करेंगे, तो नाना जी को लेकर बोले, ठीक है तुम चलो, तुमको लेकर मैं जमराज के पास जाऊंगा, तो जमराज को थोड़ा अनुरोध करूंगा, अरे नाना जी को मृत्यु का बंद कर दो, स्टॉप डेथ। तो नाना जी को लेके यमराज के पास गए, यमराज जी मेरा नाना जी मरने चाहते नहीं, आप कुछ व्यवस्था कर दीजिए, इसका मृत्यु का स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो यमराज ने बताया, मैं मृत्यु का कैसे स्टॉप करूंगा, मैं थोड़ी मृत्यु का कंट्रोल और नियंत्रण करता हूँ, मैं तो पाप पुण्य का विचार करता हूँ, उसका माफी फल देता हूँ, मैं मृत्यु का नियंत्रणकारी नहीं हूँ। तो व्यासदेव ने बच्चे पूछे, तो मृत्यु का नियंत्रणकारी कौन होता है, महाकाल पुरुष, महाकाल पुरुष जो होता है वो मृत्यु का नियंत्रण कर, तुम उनके पास जाओ। तो व्यासदेव जी नाना जी को लेकर महाकाल पुरुष को जाने के लिए जो प्रस्तुति लेते थे, तो व्यासदेव जी जमराज के पास गए, बोले तुम थोड़ा मेरा साथ चलो, हाँ मेरा पक्ष से थोड़ा मेरा और उससे थोड़ा उनको अनुरोध करो, हाँ मैं जैसे नहीं मरेगा। तो जमराज जी के व्यासदेव का नाना जी बोलते हैं, कैसे मना करेंगे, तो वो साथ में गए। तो जमराज व्यासदेव नाना जी तीनों मिलके महाकाल पुरुष के पास गए। तो महाकाल पुरुष जी, तुम मेरा नाना जी मरने चाहते नहीं, आप कुछ व्यवस्था कर दीजिए, आप तो मृत्यु का नियंत्रण करता होते हो, तो कुछ व्यवस्था कर दीजिए, अरे नाना जी नहीं मरेंगे। तो महाकाल पुरुष ने बताया, देखो मैं तो मृत्यु का नियंत्रण करता हूँ, लेकिन उसमें उसका भाग्य में क्या है, तो रेकर चित्रगुप्त के पास है, जो चित्रगुप्त के पास है देखने पड़ेगा। तो व्यासदेव फिर चित्रगुप्त के पास जाएंगे, तो नाना जी महाकाल पुरुष के पास गए, बताए आप थोड़ा हमारे साथ चलो, चित्रगुप्त के ऑफिस में चलो, मेरा मेरा पक्ष होकर कुछ बताना उसको, नहीं से नहीं मरूंगा। तो महाकाल पुरुष भी साथ में गए, ऐसा नाना जी साथ में व्यासदेव महाकाल पुरुष यमराज इस तीनों को लेकर चित्रगुप्त का ऑफिस में पहुंच गए। तो चित्रगुप्त को बोले, व्यासदेव देखो मेरा नाना जी मरने चाहते नहीं। तो महाकाल पुरुष ने बताया, तो उनका रिकॉर्ड खोला, कैसा क्या होता है उनके बारे में हमको जानकारी करना चाहिए। तो चित्रगुप्त जी उनका नाफी खोलने लगे, तो नाफी चेक करते थे, रिकॉर्ड चेक करते हुए, अरे इनका भाग्य में तो मृत्यु नहीं। तो सब खुश हो गए, अरे इनका हम लोग ऐसे चाहते थे, किसी का भाग्य में मृत्यु नहीं, तो सब तो खुद खुश हो गए। तब चित्रगुप्त भाई, रोको 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 रोको, इसका भाग्य में मृत्यु नहीं, लेकिन कभी ऐसा होगा तो महाकाल पुरुष यमराज और व्यासदेव इकट्ठा हो जाएंगे, तो तभी उनका मृत्यु होगा, नहीं तो मृत्यु नहीं होगा। तब साथ साथ उन्हें मर गए, तो उनका वाक्य शेष होने से पहले मर गए। उनका भाग्य मृत्यु नहीं था, लेकिन जो मृत्यु जैसा होगा वो सबको बोला के ले आए उधर, वो मरने वाले नहीं थे, लेकिन गाय जमराज को बुलाए, महाकाल पुरुष को बुलाए और व्यासदेव को बुलाए, तुम इकट्ठा हो, जैसे मैं मरूंगा, यही हम लोग का हालत होता है। हम लोग जिंदगी भर कोशिश करते हैं میرے تھوڑا زیادہ جی لیکن میرا کوشش ہے جلدی مرنے کا ویوستھا کرتا ہے. ہاں ایچ اینڈ ایوری ایکٹیویٹی, ہر کرتویہ, ہر کرما, جو کرما ہم لوگ کوشش کرتے ہیں تھوڑا زیادہ جینے کے لیے نا, ایک کرما ہی مرتیو کا نکٹ میرے کو لے جاتا ہے. کیسا ہم مرتیو کو ہم لوگ کو اچھا سے جانکاری ہونا چاہیے. تو مرتیو کے بارے میں شاستر بہت ساری چیز بتائے ہوئے, لیکن جو بھگوان کا بھکت ہے وہ مرتیو کو نہیں ڈرتا ہے, جو شدھ بھکت ہوتا ہے. دھرو مہاراج, ہاں دھرو مہاراج تو دیہات کیا کریں گے نا, مرتیو سوئیں آ کے کھڑا ہو گیا اس کے سامنے میں. دھرو مہاراج کیا کہ مرتیو کا سر کا اوپر ان کا پیر کا رکھ کے بس بھگوت دھام چلے گئے. مرتیو آنے سے بھی مرتیو بھگوان کا بھکت کچھ کر نہیں پاتے ہیں. تو کوئی بولا گا رہے بھگوان کا بھکت تو نہیں مریں گے, بھگوان بھکت تو مرتے ہیں. تو پربھوپاد بولے مریں گے لیکن جنم نہیں ہوگا. بھگوان کا بھکت بھی مریں گے, بھگوان کا بھکت بھی بیمار ہوتا ہے, بھگوان بھکت بھی دکھی ہے ایسا لگتا ہے. تو بولے کہ جو بھگوان بھکت نہیں وہ بھی مرتے ہیں, اس کو بھی بیمار ہوتا ہے. تو دو تو دیکھنے کے لیے ایک ہی لگتے ہیں, لوگوں کو تو بھگوان کا بھکت ہونے سے تو ایک ہی پرابلم ہوتا ہے. لیکن پربھوپاد نے بتایا دیکھو کہ دیکھنے کے لیے ایک ہی لگتا ہے لیکن اسے بہت انتر ہے. پربھوپاد نے درشٹانت دیے, جیسے بلی ہوتا ہے, بلی بلی منہ میں چوہے کو پکڑ کے, منہ میں پکڑ کے چوہے کو لے کے ایک جگہ پر ایک جگہ لے جاتا ہے. اور وہ بلی بھی اس کو بچہ کو لے کے منہ میں پکڑ کے ایک جگہ پر ایک جگہ پر لے کے جاتا ہے. تو دیکھنے والا تو لگتا ہے دونوں چیز ایک ہی لگتا ہے نا. ہاں بلی بچہ کو لے کے پکڑ کے منہ میں پکڑ کے ایک جگہ پر ایک جگہ لے جاتا ہے, اور بچہ کو بھی پکڑ کے لے جاتا ہے. لیکن دونوں کو دیکھنے کے لیے ایسے لگتا ہے کہ دونوں کا اوستھا فرق بہت ہے. بلی کا منہ میں جو بچہ ہے وہ سرکشت ہوتا ہے, اور بلی کا منہ چوہے ہوتا ہے تو اوستھا حالت خراب ہے اس کا. تو اس معاف بھگوان کا بھکت ہر سمے سرکشت, دیکھنے کے لیے باہر سے ارکشت لگتے ہیں لیکن بہت سرکشت ہے. اس لیے بھگوان کا بھکت ہر سمے بھگوان کو سمر چرن کمل کو چھوڑتے نہیں. تو پانڈووں کا لائف دیکھو, دیکھنے کے لیے لگتا ہے کیسا بہت دکھی ہے, کتنا سمجھتا جیون میں آیا لیکن بھگوان کو چھوڑے نہیں. کیونکہ جو بھگوان کا بھکت ہوتا ہے جتنا وپد میں آپد میں آنے سے بھی وہ آپ کو سرکشت مانا کرتا ہے, سوچتا ہے میں سرکشت ہوں. جیسے پربھوپاد نے اور ایک ایگزامپل دیے, تو کبھی کبھی آپ کا گھر میں بچہ لوگ کے لے کے پتا کھیلا کھیلتے ہیں نا, بچہ کو ایسا ہاتھ میں پکڑتے ہیں, تو جب پکڑ کے رکھتے ہیں تو بچہ تو ہنستے ہیں, کو آنند ہے پتا جی میرے ہاتھ میں پکڑ کے رکھے, کوئی میرے کو پرواہ نہیں کرنا, چنتا نہیں کرنا. تو کبھی کبھی پتا جی کیا کرتے ہیں نا, بادشاہ کے ساتھ کھیلتے ہیں, بچہ کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ہاتھ میں پکڑتے ہیں ایسا آکاش میں پھینک دیتے ہیں, ایسا کرتے ہیں کھیلتے ہیں نا, پھینکتے ہیں پھر پکڑتے ہیں, پھینکتے ہیں پھر پکڑتے ہیں, ایسا کرتے ہیں, اچھاڑتے ہیں تو اچھاڑ دیتے ہیں پھر پکڑ دیتے ہیں, ایسا کرتے ہیں تو اچھاڑتے ہیں تب کی باتیں روتا ہے, کیا کرتے ہیں تو وہ ہنستا ہے, ارے باتیں سوچتے ہیں تو گر جائے گا تو مر جاؤں گا, تو زیادہ ہنستا ہے, تو اچھاڑتا ہے زیادہ ہنستا ہے, پکڑنے سے کم ہنستا ہے تو اچھاڑتا ہے تو زیادہ ہنستا ہے. وہ ڈرتے نہیں میں گر جاؤں گا کیا ہو جائے گا, وہ کیوں ڈرتے نہیں, ہاں اس کو معلوم میرا پتا جی ہے. تو بھوت کی جگت میں کون ڈرتے ہیں, بھیم دتیہ ابھینویش تشاط ایس اپتشت وپرج ہے اسمرت, بھائے ڈرنا کس سے ڈرتے ہیں, بھیم دتیہ ابھینویش تشاط ایس اپتشت, تو ایشور سے مخ موڑ دیتے ہیں تب ہاں وپرج ہے اسمرت بھگوت وسمرتی. ہم لوگ اس وپرج اوستھا نکشت کرتے ہیں تو ہم لوگ ڈرتے ہیں, سب کچھ ڈرتے ہیں. ایک چنٹی سے شروع کر کے برہما تک سب لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ سب کا حالت ایسی ہے. ایسا اپتشیا بھگوان سے ہم لوگ منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اسی لیے ہم لوگ ڈرتے ہیں. تو اسی لیے مرتیو کے بارے میں جانکاری کرنا بہت ضروری ہے. تو مرتیو کے بارے میں ایک کتاب لکھا انگریزی میں, تو اس میں پروپر گرنتھ جو پڑھتا تھا ایک جگہ پر دیکھا ایک شلوک میں لکھا ہے, اس جگت میں استری پورش کا مرتیو کا کارن ہوتا ہے. और औरत पुरुष का मृत्यु का कारण होता है, क्योंकि औरत लोग माया का सृष्टि है और औरत लोगों का सेवा लेने के खूब अच्छा लगता है, भागवत में लिखा है। तो जो औरत लोग का सेवा लेने को अच्छा लगता है ना, तो माया में फंसते उनका मृत्यु अनिवार्य है। लेकिन औरत लोग का भी नेक्स्ट वर्ष ऐसा है, औरत लोग के लिए पुरुष और मृत्यु का कारण है लिखा है। वो लिखा है जैसा जैसा हंटर शिकारी होता है बांसुरी बजाता है, तो लिखा है तो नारी का सेवा पुरुष को बहुत अच्छा लगता है, उसमें से फंसते हैं। आप पुरुष और नारी को जप्न करते हैं, उसको कपड़ा देते हैं, मकान देते हैं, नारी को भी खूब अच्छा लगता है, तो दोनों दोनों का मृत्यु का कारण होता है। ये मरण का मरण का फान बता है भगवान, ऐसा जगत बना है तो शुरू से मृत्यु का फान बना कर रखा है। फान क्या फांदा, हाँ ये जगत का सृष्टि हुआ ऐसा ही है, ये शुरू से फांदा बना कर रखा है। हाँ तो कौन मरेगा, सब मरेंगे इधर पर, सब मरेंगे, हर मुहूर्त मृत्यु होता है, मरने का टाइम आएगा ऐसा नहीं, प्रभुपद हर मुहूर्त में हम लोग मृत्यु होता है। देही नस्मिन तथा देह कौमारंग जौवनंग जरा तथा देहांतर, मृत्यु का डेफिनेशन गीता में बता क्या मृत्यु है, तथा देहांतर प्राप्ति, देह अंतर देह प्राप्ति और जिंदगी भर हम लोग का मृत्यु होता है, बचपन से मृत्यु होता है। मेरा एक साल जब उम्र था कोई मेरे को देखा हुआ, आज देखेंगे मेरे को पहचान पाएंगे, पहचान है नहीं, नहीं पहचानेंगे, वो शरीर रूप ही नहीं, रूप का परिवर्तन हो गया, मन का परिवर्तन हो गया, बुद्धि का परिवर्तन हो गया। तो हर समय हर 7 साल में साइंटिस्ट ने बताते हैं हमारा बॉडी का सेल सब चेंज हो जाता है, तो मृत्यु हर समय होता है। तो मृत्यु बहुत बड़ा बात नहीं है, वंशा से गिरनानी तथा व्याह या नवा ने गिरनाती नरोपराणी, जब कपड़ा जीर्ण हो जाता है उसको फेंक देते हैं, तो मृत्यु के बारे में इसका जानकारी होना चाहिए हम लोग को। तो मृत्यु का भगवान का जो 2 रूप होता है, तो ऐसा होगा भगवान को नहीं मानेंगे तो मृत्यु के पास में आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। तो भगवान का आत्मसमर्पण करेंगे तो भगवान का द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर रूप दर्शन करेंगे, तो श्याम सुंदर रूप में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो मृत्यु का रूप में आत्मसमर्पण करेंगे। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने बताते हैं, एबे नाभ जिले जशोदा सुत चरमे पड़ीबे लागे, अभी तुम जशोदा सुत नंदनंदन कृष्ण के चरण कमल में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, चरमे पड़ीबे लागे, यू विल बी पुट इन वेरी एम्बैरेस्ड पोजिशन, बहुत लज्जा कर परिस्थिति तुम कहेगा, तुम अभी आत्मसमर्पण करेंगे नहीं, और भगवान जब उसका भीषण रूप काल रूप धारण करेंगे, हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ उनका पीछे पीछे दौड़ेंगे, तो लज्जा होगा, तो पहले से आत्मसमर्पण नहीं करना करेंगे, तो पहले से ये आत्मसमर्पण करना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद ने बहुत जोर देते हैं, साधन करो भजन करो मरते जान लो है। कभी कभी मेरे को ऐसा याद आता है, मैं जब घर में था तो मैं बोलता था मैं साधु बन जाऊंगा, तो घर लोग तो कभी चाहते नहीं को लड़का साधु बन जाएगा, कभी कभी माँ ने गुस्सा करके बोलते थे तुम जाओ मरो जाके उधर, ऐसा बोलते थे तुम जाके मरो उधर, तो मेरे को अभी ऐसा लगता है मैं इधर मरने के लिए आया हूँ। तो माँ ठीक ही बता, तुम जाओ मरो उधर। पूर्ण भगवत जीवन आध्यात्मिक जीवन ये मूर्ति का प्रस्तुति के लिए हमारा भक्तिवंत नेशनल स्कूल का बच्चों आ गए इधर डांस करेंगे। अभी तो अभी जो चर्चा हुआ इससे तक भयंकर चर्चा था, भयंकर था ये मेरा लगता है इसको पढ़ने से हम लोग का भय दूर होगा, क्या मूर्ति का स्वरूप मालूम पड़ेगा, भय दूर होना, तो कोई डरने डरते थे तो अभी बच्चे लोग नाचेंगे तो मन फिर अच्छा हो जाएगा। तो अभी डांस होगा हमारा मायापुर से आगे भक्ति वेदांत नेशनल स्कूल का बच्चे लोग नृत्य करेंगे रास लीला और कुछ डांस करेंगे। कल भी ऐसा हमारा अनुष्ठान होगा, मैं कल माया के बारे में बताऊंगा, माया कैसा चीज है, माया का स्वरूप भी मालूम होना चाहिए। हम लोग सब भगवान को पहचानने के लिए सोचते हैं लेकिन भगवान को माया को पहचानना चाहिए ना, भगवान माया का बहुत स्वरूप बहुत तात्पर्यपूर्ण होता है, तो माया का 5:30 टुमारो, 5 बजे से भजन कीर्तन शुरू होगा 5:30 to 6:30। और कल भी बच्चे लोग रेडी, कल भी बच्चे लोग और डांस करेंगे, आप लोग इधर इकट्ठा होंगे। तो आई लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आके हम लोग को मौका दिए भगवान के बारे में चर्चा करने के लिए। आप लोग को विशेष धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभु।